फिर इसी तरह से अब यहाँ थोड़ी सी गज़वाए हुनैन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नाम आया तो ज़ाहिर है कि ये एक जंग थी और बहुत बड़ी थी। तो गज़वाए हुनैन क्या है? हुनैन चंद जुमले लिख लें ऐसे 1 2 3 करके तो आसानी होगी। हुनैन क्या है? मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम है। कहते हैं कि मक्का से 3 दिन का सफ़र है, घोड़ों और ऊँटों पर जाते हैं, और इसी वादी को वादी औतास भी कहते हैं, अलिफ वाव तोए अलिफ सीन के नाम पर। और बनु हवाजन, हा हवा जैसे लिखते हैं ना, बनु हवाजन वहाँ रहते थे। वादी अगरचे हुनैन से लग गए लेकिन इलाके को हुनैन कहते हैं। अब हुआ क्या कि मक्का फतह हो गया। कब हुआ सब बोलिए। देखिए हमें याद होने चाहिए ये साल, जैसे अपनी ज़िंदगी के माहों साल याद हैं तो इस्लाम की तारीख भी याद होनी चाहिए। मक्का फतह हुआ 8 हिजरी को। अब जब फतह हुआ ना एक फीलिंग आ गई कि अब अरब का जो मरकज़ था वो मुसलमानों के हाथ में आ गया। सीधी सी बात है ना, कैपिटल आ गया, क्योंकि कुरैश उस वक़्त तक पहले बहुत मरकजी हैसियत रखते थे, अब इस्लाम आ गया। बस इस्लाम के इस गलबे को देख कर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। और लिख लें, पहले दिन के सबक में भी ये बात बताई थी, मुश्किल हालात में इस्लाम में आना मुश्किल होता है लेकिन वो लोग जम जाते हैं। लेकिन जब इस्लाम में आसानी आती हैं, फतूहात आती हैं, कामयाबियाँ आती हैं ना, तो फिर लोगों का उसमें आना बड़ा आसान है। अच्छा हम भी जाके देखते हैं, हम भी चलते हैं, पर ठहरते थोड़े हैं, वो हवा की तरह आते और जाते हैं। तो फतेह मक्का के बाद बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। लेकिन ताइफ जो एक नाम के साथ ही एक दर्द लेकर आता है हमारे अंदर सीरत के नाते से, उसका हाल बहुत उलट था। बड़े लोगों की जगह थी, अमीर कबीर लोग थे, पौश इलाका था। वहाँ दो बड़े कबीले अपनी ताकत और मालदारी की वजह से किसी को खातिर में नहीं लाते थे। तो हवाजन और स्कीफ के कबीलों ने बजाय इसके कि इस्लाम कबूल करते फतेह मक्का के बाद, उन्होंने मुसलमानों से जंग की तैयारियां शुरू कर दी। वो ये समझ रहे थे कि अगर हमने कमज़ोरी दिखाई ना तो अब मक्का के बाद बारी ताइफ की आएगी। मुसलमान इलाकों पे इलाके फतह करते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि ताइफ पे भी हमला कर देंगे। तो चूँकि उनको एक तो अपनी दौलत पे मान था, शोहरत पे मान था, बहादुरी पे बहुत बड़े थे, फ़नून जंग उनकी बहुत अच्छी थी यानी वॉर टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी, और दो कबीले याद रख ले, ख्वाजन और सकीफ, तो इनके जो बड़े बड़े सरदार थे वो सारे मिले। उन्होंने अपनी फ़ौजें जमा करनी शुरू कर दी। नाम बहुत सारे हैं उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन चंद बातें इसी में बहुत ही काबिले तकलीद हैं उसको सामने रख दूंगी। लेकिन यह है कि वो सब तैयार, और ना सिर्फ ये कि मर्द जमा हुए, औरतें और बच्चे भी ले लिए। क्यों? कहा औरतें बच्चे मैदान जंग में क्या करेंगे? कहा नहीं, हमारे सिपाहियों के अंदर गैरत होगी कि औरतें बच्चे ज़्यादा हैं तो बहादुरी से लड़ेंगे। चुनाचे वादी और तास पर तक पहुँच गए, अल्लाह के नबी तक खबर पहुँची। अब आप क्या करते? हाय सॉरी, माफ़ कर दो, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं देखे, अच्छा मक्का की ये चीज़ें भी तुम ले लो, जमजम का कुआं ले लो। नहीं, आपने कहा अच्छा जी हमें आंखें दिखाते हो, हम भी आएंगे तुम्हारे पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल नहीं था, इस्लाम बड़ा भी कमज़ोर था, हालांकि मक्का फतह हो चुका है। हत्ता के कहते हैं कि इस जंग के लिए रसद और सामान्य जंग के लिए कर्ज़ की ज़रूरत पड़ी, और अब्दुल्ला बिन रबिया बहुत दौलतमंद शख्स थे, उनसे 30,000 दिरहम कर्ज लिया। और सुफान बिन उमैया जो मक्का का रईस था और मेहमान नवाजी में मशहूर था, लेकिन अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, इससे अल्लाह के नबी ने जंग के लिए असलहा उधार मांगा, और इसने 100 जिरहें पेश की और उसके साथ चीज़ें दी। तो लिहाजा डेट लिख लीजिए, 8 हिजरी को जो जनवरी फरवरी का महीना बनता है 630 में, इस्लामी फ़ौज 12,000 की जमा हो गई और सब हुनैन की तरफ चले। बस वो एक खूबी देखी ना, देखिए 10,000 तो नबी सल्लम के साथ फतह के मौके पे आए, ये 2,000 कौन है? तुलका, तोए लाम काफ अलिफ हमज़ा। तुलका कौन लोग हैं आप में से किसी को पता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था ना तो तकरीबन 2,000 के करीब ऐसे लोग थे, आपने उनको बग़ैर किसी बात के माफ़ कर दिया, अंतुम तुलका, तुम आज़ाद हो। तुलक कहते हैं आज़ाद को। वो जो 2,000 लोग आज़ाद के, सिर्फ 5-6 नामी ग्रामी लोग रखे थे कि इनको नहीं छोड़ना, काबे का पर्दा भी पकड़ें तो पकड़ लो, जिसमें एक इकरमा बिन अबी जहल भी थे। तो वो जो 2,000 जिनको अल्लाह के नबी ने, जिसको आप कहना चाहिए कर्टसी में या रहम दिली के साथ माफ़ किया था ना, अगले ही दिन वो कह लीजिए अपनी ज़ुबान में सब मुसलमान हो गए। क्या आपने हमें 13 साल के जुल्म करने के बावजूद, हमने जो आप पे किया माफ़ कर दिया, हम मुसलमान होते हैं, ये कोई नहीं सुनाता। अल्लाह के नबी का अख्लाक था जो लोग दीन पे आते थे, हमारे अंदर वो अख्लाक नहीं नज़र आता। खैर वो 2,000 जमा हुए तो 12,000 हो गए। कहते हैं सिर्फ एक बंदे, अब मुझे नहीं पता है ये बात सच है नहीं, कहते हैं सिर्फ एक बंदे की मुंह से ये बात निकल गई, आज हम पर कौन गालिब आएगा। कल तो 313 थे तो फतेह बनकर आए, आज तो माशाल्लाह 12,000 है। बस अल्लाह को वो एक जुमला नहीं पसंद आया, अल्लाह ने झटका लगा दिया। मुसलमानों का लश्कर निकला, 10 शवाल को निकले पहुंचे, सब हुआ। हुआ क्या कि ख्वाजन कबीला जो तीरंदाजी में बड़ा आला था, छुप के घाटियों में बैठे थे, मुसलमान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये सोच रहे थे वहाँ जाएंगे फिर दूब दू लड़ाई होगी जैसे उस दौर में होती थी, लेकिन इन्होंने छुप के घाटियों में से अचानक हमला किया और मुसलमान बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची उस वक़्त कि फिर मुसलमान कह लीजिए कि बुखला गए। भागने वाले मुसलमान जिनके मैदान जंग से कभी कदम हटे नहीं थे वो भी उस वक़्त घबरा गए। क्यों? अल्लाह कहते फलम तुगनी अनकुम, तुम्हें किफ़ायत नहीं, क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं आई ये बात। तो बहरहाल फिर वहाँ जब मुसलमानों को एहसास हुआ, काफ़ी ज़्यादा उसमें इस तरह नुकसान हुआ, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने फिर पकड़ा। लकत नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा, अपने दिल में रिक्कत पैदा करके अल्लाह ताला की बात किया करें कि मेरे रब ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, जैसी मैं हूँ ना तो मुझे तो अल्लाह पानी का एक घूंट ना दे, अल्लाह मेरे करतूतों को देखे तो मुझे सारे शहर में बदनाम कर दे, ये मेरा रब है जो लकद नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिना कसीरा। हम बड़े नेक और मशहूर होके बैठे होते हैं, बड़े नेक हैं, ये असल में अल्लाह हमारे ऊपर एक के बाद एक फजल करम करता है। तो यहाँ से असूल ये निकलता है, नज़रें अल्लाह पे लगाओ, कभी अपनी ऊपर बड़े हम बड़े अच्छे, इसको दीन पे ले लीजिए, अपने ही गुण गाते रहना, अपने ही कहना चाहिए कंधे थपथपाना, कोई हमसा हो तो आए, हमने पहली दफ़ा काम किया, हमने इस शहर में दीन शुरू किया, जो हम करें कोई नहीं करे, आऊज़ बिल्ला पढ़े, कभी बड़ा बोलना पड़े, जो करते हैं उसको भूल जाएं, जो करना है उसको याद रखें। ये जो सबके इलाके और अक्सर प्रोग्रामों के शुरू में मैंने देखा है, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, पहले वो आधा घंटा ऑडियंस को अपनी खूबियाँ सुनाते हैं, हम इस शहर में आए, फिर हुआ, हम पहले थे, हमने ये किया वो किया, शुक्र कीजिए अल्लाह ने अभी तक हमारा नाम दीनदारों में रखा हुआ है, कहीं और नहीं रखा। तो बहरहाल वो सहाबाए कराम थे, वो इंसान थे, गोश्त पोश के इंसान थे, अल्लाह ताला ने उनको कैसे रखा, बारिश भेज दी, जब बारिश हुई हालात बदल गए, और उसके बाद फिर अल्लाह ने इतना जमाव दिया। आपको अगर एंड पे ले जाऊँ, एक तो आंधी आई जिससे दुश्मन भाग गए, और तीरों का जो मी बरस रहा था उसका रुख बदल गया, और दुश्मन को अपने कदम जमाने का मौका मिला, और एक भगदड़ थी, सहाबा भी भाग रहे थे, और एक यानी कह लीजिए क्योस बरपा था। फिर आप कहते हैं किस चीज़ ने यूनाइट किया उस वक्त, लीडर की आवाज़ ने, अल्लाह के नबी सल्लम ऊंची जगह पे खड़े हुए, और आपने अपने दाई जानिब देखा और करा या माशर अल अंसार, ए अंसार वालों किधर हो, ये क्या हो गया, वो सारे दावे झूठे थे, सारे बस 4 दिन की बातें थी, बस इस आवाज़ को सुनने की तासीर थी। अंसार बोले लब्बैक या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, अबशिर नहनु माका, हम बड़े खुश हैं कि हम इस वक्त भी आपके साथ हैं, ये नहीं कहा क्या मुश्किल में डाल दिया। और एक रिवायत में आता है कि उन्होंने कहा नहनु बैना यदैक, अल्लाह के नबी हम आपके हाथ के सामने, यानी हम आपके करीब हैं, हम इस दुख में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये होते हैं अंसार, अंसारुल्लाह बनना आसान काम नहीं है, या आप अपने हालात और वाक़यात के हिसाब से नहीं बनते, ये आप ज़रूरत के तहत बनते हैं, ज़रूरत हो दीन को आपकी और आप ज़ाती मसलों में उलझ कर दीन को रखें तीरों तलवारों के हवाले, तो याद रखिए ऐसे मुसलमानों के ऊपर फिर अल्लाह की मदद नहीं आती। फिर इस वक्त अल्लाह के नबी खुश हुए कि अभी मेरे साथी इधर ही हैं, फिर सवारी से उतरे, जलाल था आपकी आवाज़ में, कहा लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ, मैं उसका पैगम्बर हूँ, बुखारी की रिवायत है अनन नबी, मैं नबी हूँ, ला कज़िब, मैं झूठ नहीं बोलता, अनाइब ने अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अब आपकी आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, ये आवाज़ें जहाँ तक पहुँचती थी तो सहाबा के वो कहना चाहिए औसान बहाल हो रहे थे, तो हज़रत अब्बास वहाँ खड़े थे, इनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, ऊंचे चौड़े चकले थे, चचा थे आपके, आपने कहा चचा आप खड़े होकर ज़रा ऊँची आवाज़ से बोलो, मुहाजरीन और अंसार को आवाज़ें दो। फिर उन्होंने जब ऊँची आवाज़ से पुकारा या माशर अल अंसार और या साहब शाजरा, ओ बेहतर रिजवान करने वालों किधर गए वो वादे, किधर गई कमिटमेंट, किधर गए वो दावे, बस ये वो पुरदर्द आवाज़ें थी। सब सहाबा फिर जमा हुए, जिनके घोड़े इधर उधर थे, जो अटके हुए थे फंसे हुए थे, उन्होंने घोड़े छोड़े पैदल चल पड़े, और उसके बाद फिर मैदान गर्म हुआ। याद रखिए मेरे आपके अंदर ईमान की हरारत नहीं है ना तो अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा, और एक जुमला लिख ले, ठंडे मुसलमान की मदद अल्लाह नहीं करता, ठंडे दीनदारों की अल्लाह मदद नहीं करता, ठंडे दाइये दीन की मदद अल्लाह नहीं करता, वो कहता है खुद ही जो करना है कर लो, अल्लाह को गर्म जोश इंसान पसंद है। अल्लाह ने कहा ईमान वाला जो है वो अल्लाह पे नज़रें रखे वो खुद ही ऊंचा होता है। अल्लाह के नबी ने इस मौके पे फिर वही काम किया जो बदर के मौके पे किया था, एक मुट्ठी भर मट्टी उठाई और यूं फेंकी, शाखतिल वजू, चेहरे बिगड़ जाएं। बस अल्लाह की शान देखिए, वो मट्टी इस तरह फैली कि दुश्मनों की आंखों में जाके कंकर बन के रोड़े बन के फैल ली, और एकदम लड़ाई का पानसा ही बदल गया। कुफार भागने लगे, उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, बनू मालिक जो सरदार मौजूद रहा लेकिन 70 लोग मारे गए। और फिर उसके बाद बहरहाल कहने का मकसद ये कि आपको पता कि मुसलमानों को क्या मिला, इतना बड़ा मुसलमानों को इसमें माले गनीमत मिला कि इसका कभी तस्वुर भी नहीं किया था। 6,000 से ज़ायद सिर्फ कैदी आए थे, ज़रा सोचिए, एक एक कैदी आप कहते हज़ारों का होता था, बिकते थे। लेकिन इसमें जंग में कुछ रिक्कत अमेज़ मंजर आए, और वो क्या थे कि इस कबीले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई ख़ानदान के लोग थे। हलीमा सादिया का नाम सुना, आपने उनका दूध पिया था। शीमा जो उनकी बेटी थी वो भी इस जंग में आ गई। जब वो कैदियों में आई तो उसने सहाबा से कहा कि मैं तुम्हारे पैगंबर की बहन हूँ। लोगों को यकीन नहीं आया कि ये कहाँ से बहन आ गई। गए अल्लाह के नबी के पास, कुछ बचपन की यादें शेयर की, और अल्लाह के नबी उनके एक निशान को पहचान गए। बात कहते हैं कि आपने कोई बचपन में कुछ दांत से काटा था या क्या था, यानी आप पहचान गए। फिर आप भी रोए और कहते हैं कि आपने अपनी चादर उठाकर उतारी और उनके लिए बिछाई, उनके सर पे कपड़ा नहीं था उस वक्त, आपने अपनी रिदा अपनी चादर अपनी बहन को दी। फिर कहा कि बहनें आती हैं तो खाली नहीं जाती, आपने बकरियां और कुछ ऊँट उनको अताए किए, और कहा कि चलो मेरे घर जाके रहना चाहो तो रहो और इसको इज्जत से पहुंचा दो। फिर उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी मैं फरमाइश करती हूँ कि मेरे कैदियों को छोड़ दिया जाए। अब अल्लाह के नबी ने देखी पिछली आयत 24, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, ये मेरे आपके लिए नहीं 8 रिश्ते, ये नबी के लिए भी थे। अल्लाह के नबी के लिए ये मौका इतना सेंटिमेंटल था, एक तरफ कुर्बत रिश्तेदारी आ गई, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी कि हम आपके ख़ानदान के लोग हैं आप हमें छोड़ दें। अब दूसरी तरफ वो जंगी कैदी बढ़ चुके थे और माले गनीमत की लिस्टें पड़ी हुई हैं, आपको मैं सुनाऊँ आप हैरान रह जाएं, इतनी तो कभी सहाबा ने ख्वाब में भी दौलत नहीं देखी थी जितनी इस जंग में मुसलमानों को नज़र आ रही थी। खैर, आपने अच्छे तरीके से सहाबा से बात की, क्या करते हो? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप कहते हैं तो हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। आपने उस कबीले के लोगों से पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि माल सारा आप रख लें, हमारे लोग हमें दे दें। अब लोगों का मतलब कैदी थे, कैदी बढ़ चुके थे। आपने आके सहाबा से कहा कि देखो, अल्लाह के दीन की मौलफतिल कुलूब यानी दीन की रग़बत दिलाने के लिए अगर इस वक्त मेरे कहने पे तुम ये कैदी खुशी से छोड़ देते हो तो ये तुम्हारा सदका होगा, और जिनका दिल नहीं कर रहा छोड़ने को, सिर्फ मजबूरन मेरे कहने पे छोड़ें, मैं वादा करता हूँ कि अगली किसी जंग में उनको ज़्यादा माल गनीमत दूंगा। और फिर हाथ आए कैदी वापस गए, सब वापस चले गए। यानी ये वो हुस्ने सलूक था जिसने बाद में इन कबीलों में इस्लाम भेजा। तो ये चीज़ें पढ़ने से ईमान गर्म होता है, ईमान ताज़ा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ रखा, जेराना का मुकाम था जहाँ फिर बैठ के माल गनीमत की तकसीम हुई। यानी बस मैं ये कह सकती हूँ कि आप इसको पढ़ें, इसको सुने, ये हमने पढ़ी भी है तजलियात नबूवत में, तो मुख्तसर है, मुझे याद है कि जब हमने इस अरही को मखदूम में पढ़ा था, इतना इंजॉय किया था, स्टोरिकल है। क्यों वक्त ज़ाया करते हैं सो सो के, क्यों ज़ाया करते हैं अपने फ़ोन के ऊपर चैट चैट के ऊपर? एक तो हिस्ट्री की बुक खोल के पढ़िए, नबी से लेके आज तक के दौर के लोग। और फिर आपको पता है कि बाद में कुछ लोगों ने कहा कि बददुआ करें इन कबीलों के लिए, तो आपने कहा बददुआ नहीं करनी, अल्लाहुम्मा अहदी सकीफ़न, अल्लाह सकीफ को हिदायत दे और तौफीक दे कि वो मेरे पास आ जाएं। और वाकई फिर अल्लाह ने उन कबीलों में इस्लाम दिया। अल्लाह अकबर, 6,000 कैदी, 24,000 ऊँट, इमेजिन कीजिए, मेरा अल्लाह 24,000 ऊँट इकट्ठे कभी मक्का में साहबा ने देखे भी नहीं होंगे, 40,000 से जायद बकरियाँ, 4,000 ओखिया चांदी, अल्लाह अकबर। वो जो शुरू में कहा ना कि वो अपने बच्चों और सबको ले आए थे, तो वो सब कुछ मुसलमानों को मिलना था। तो बहरहाल अल्लाह सुबहाना तआला ने ये सारी चीज़ें रखी। तो मेरे आपके लिए ये एक सबक है कि इतना कुछ दिया, एक एक सहाबी के हाथ में 100 100 ऊँट आया था, इससे भी ज़्यादा आए थे, तो अल्लाह ताला ने रखा। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्यू मुस्लिम, वो बताया ना जो 2,000 थे, उनको ज़्यादा दे दिया, मुअल्लफतुल कुलूब, अंसार को कम दिया। अब जब कम दिया तो वो जैसे कहते ना कि बात दिल की निकल ही आती है, बात आ गई नबी तक पहुंच गई कि अंसार ने कहा हाँ, हम पुराने लोग थे, इतनी खिदमतें करने लगे, हमें तो कुछ नहीं दिया, नए लोगों को बांट दी चीज़ें। چلے بانٹ دیے، اللہ کے نبی تک بات پہنچی، سب کو آپ نے بلایا اپنے خیمے میں. بخاری کی روایت آپ کو سنا رہی ہوں. آپ نے انصار سے پوچھا، انصار کیا واقعہ ہے، کچھ بات ہے دل میں؟ تو انصار نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے جو سنا ہے سچ بولا. یعنی ہمارے دل میں آپ کے بارے میں یہ خیال آ گیا تھا. اس کے بعد جو آپ نے خطبہ پڑھا اس کی مثال بلاغت کے اعتبار سے نہیں ملتی. آپ نے رقت بھرے انداز میں کہا، لوگو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اور اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دی؟ تم منتشر تھے، پراگندہ تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا کیا. تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو دولت دی. آپ ہر فقرہ بولتے جاتے اور انصار ہر جملے کے جواب میں کہتے، اللہ رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے فرمایا، نہیں، تم یہ جواب دو. اب دیکھیے، اللہ کے نبی نے پہلے ان کے اوپر احسان جتلایا، لیکن ان کے جواب کے بعد ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کہا یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی. یعنی اگر آپ نے ہم پہ احسان کیا تو ہم نے بھی تو آپ پہ احسان کیا. دیکھیے یہ ہوتا ہے دل ملنا، کہ ایک بندہ کہ نہیں آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جناب یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور آپ یہ کہو کہ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اور ہم نے آپ کو بنا دی اور آپ مفلس تھے اور ہم نے آپ کی مدد کی، اور یہ جواب دو، تو میں کہتا جاؤں گا آگے سے تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو. لیکن اے انصار، آخری جملے ہیں، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ؟ کیونکہ اللہ کے نبی انصار کے ساتھ ہے. بس یہ جملے سن کے بے اختیار انصار چیخ اٹھے، ہم کو صرف اور صرف محمد رسول اللہ چاہیے. اور اکثر کا حال یہ ہوا کہ روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. آپ نے انصار کو سمجھایا کہ یہ نئے لوگ ہیں، ان کے ابھی قدم نہیں جمے ہوئے، ابھی ان کا دل قرآن پہ نہیں جڑا. اور یاد رکھیے، بندہ کبھی ایک چیز لینے آتا ہے، پھر لینے کے بہانے دوسری بھی لے جاتا ہے. تو نئے لوگوں کے قدم جمانے کے لیے ان کو تحفے دینے چاہیے، ان کو گفٹس دینے چاہیے، ان کو کمنٹس دینے چاہیے. لیکن پرانے لوگوں کو کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہی ساری نوازشیں ہوں. تو بہرحال یہ چیز اس وقت ہوئی، اور ایسے موقع پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک جو تھا ہمارے سامنے ہے. اب آپ دیکھیے، کہنے کو یہ صرف ایک جنگ کا واقعہ ہے، لیکن کیا آپ کو ایک منٹ کے لیے بھی احساس ہوا کہ آپ کو مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم یہ کیوں پڑھیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے. تو ساری باتوں کو چھ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے، چھ لفظ لکھ لیجئے. نمبر ایک، جو ہدایات ملتی ہیں ان جنگوں میں، جو ہمارے لیے ایک عمل کے موتی ہیں. نمبر ایک، ثابت قدمی، حالات کچھ بھی ہوں قدم نہ ڈگمگائیں. نمبر دو، کثرت سے ذکر اللہ کا. آپ کے بھی اس رستے میں جو آپ دین کی خدمت کرتے ہیں یا آپ سیکھتے سکھاتے ہیں، جب مشکل آئے یہی چھ اصول یاد رکھیے، قدم نہیں ڈگمگانے، حالات جیسے بھی ہیں میں نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. اور دوسری بات، کثرت سے ذکر، اعوذ باللہ شروع کر دیں، لا حول پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیے گا مشکلات کیسے ہٹتی ہیں. تیسری چیز، اللہ اور رسول کی اطاعت. اور چوتھی، تنازعوں سے پرہیز. میری ڈیوٹی نہیں تھی، تمہاری تھی، میں نے پہلے کہہ دیا، میں نہیں کر سکتی. آپس کے جھگڑے یاد رکھیے ہوا اکھیڑ دیتے ہیں. اور پانچویں چیز، صبر صبر صبر. اور چھٹی چیز، اترانے اور نمائش سے احتراز. مت بڑے بنیے کہ میں بہت کرتی ہوں کام، مجھ سے بہت ہو جاتا ہے اور میرے لیے تو یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جھٹکا اتنا سخت لگاتا ہے کہ اس کے بغیر اللہ کام کرا کے دکھاتا ہے. لو دیکھو، تم کہتی تھی میرے بغیر کام نہیں چلنا، پتہ چلا کچھ دن تم نہ آئی تو اس سے بھی اچھا کام ہو گیا. لوگوں کو سمجھ آیا نہیں، اب ان کو نہیں ان کو ہی رکھ لو. تو کبھی مان نہ کرے، بس عزت سے سر ڈال کے اللہ کے ان رستوں میں کام کرے. میں اپنے اوپر لیتی ہوں، میں کہہ دوں جیسا میں پڑھا سکتی ہوں کوئی نہیں پڑھا سکتا. اور یہی اکڑ مجھے، یہاں ایک ہفتہ 10 دن چھٹی کرا دے، میں نہ بھی آئی تو کوئی بات نہیں، لیکن ان 10 دنوں میں کوئی اور آپ کو اتنا اچھا پڑھا جائے گا، جب میں آؤں گی آپ مجھے رکھیں گے ہی نہیں، آپ کہیں گے جائیے جی آپ سے اچھی ٹیچر موجود ہے ہمارے پاس. تو یاد رکھیے، یہ کام عاجزی سے ہوتے ہیں. آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ اس کرسی کو گواہ بنا کر کہے کہ اس پہ میں نہیں بیٹھنا. یہ صرف سورۃ توبہ کا سفر نہیں ہے، یہ سارا سفر آگے چلنے کے ہمارے یہ کام ہے. تو لہٰذا آخر میں واللہ غفور و رحیم کر کے کیا کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کے رستوں میں کام کرنے والوں کی اللہ کمی بیشیوں کو معاف کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ اس کے بندے بھی تو وہی ہیں، تو ہم سے کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے انسان ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگا لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ جو اندیشہ شروع میں دل میں آیا تھا نا، کہ جب کفار آئیں گے نہیں تو پھر ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، جو اندیشہ تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، آیت 28. اب اس کا تعلق پہلے حصے سے ہے، सूरत के शुरू में क्या था, बरात मिन अल्लाह, उस ऐलाने बरात का ये आखिरी जुमला है जो आप और मैं यहाँ पढ़ रहे हैं। यानी आप देखिए, अब वो आयत नंबर एक थी तो ये 28 है, 27 आयतें बीच में माजी की हैं, अब दोबारा उसको जोड़ दिया, याद है ना वो सब वाक्यात। तब उसी का एक आखिरी हुक्म आयत 28 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, ए अहले ईमान, मुशरिकीन यकीनन नापाक हैं, फला यक्रबुल मस्जिद अल हराम बाद आमिहिम हाजा, इस साल के बाद से मस्जिद हराम के करीब ना आए, यानी सन 9 हिजरी के हज में तो मुशरिकीन शामिल थे, लेकिन अब अगले साल कोई मुशरिक हज पे नहीं आएगा और किसी को इजाज़त नहीं होगी। और यहाँ एक दिलचस्प बात बताऊँ, किसी से मुझे फीडबैक मिला कि जो हमने ज़िलहज का प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि नबी सल्लम ने बस एक हज किया था, याद है बात आपको, उसको समझिएगा, सन 9 हिजरी तक वहाँ बुत भी थे, बुत परस्ती भी थी, और घुले मिले लोग, नंगे पटंगे सब तरह के लोग थे। और दूसरी बात जो आगे इस सबक के एंड पे हम पढ़ेंगे, नसीह के तौर पे उन्होंने हज के दिनों को महीनों को बदला हुआ था, अल्लाह ने अपने नबी को उन गैर शरई दिनों में हज कराया ही कोई नहीं। अगला साल 10 हिजरी जिसमें अब अल्लाह के नबी ने हज करना है, ये सारी पेशबंदियाँ उसकी कि मेरा नबी जब हज करने आए तो वहाँ कोई गंदी हरकत ना हो, वह नंगी औरतें ना हो, वह बुत ना हो, तो लिहाजा 9 के बाद फिर कोई नहीं आएगा। अब ये ऐलान सुन के, जैसे आपको जिक्र किया कि लोगों को आए, अच्छा फिर नहीं आएंगे, हज उनके लिए एक मेला बन चुका था, कह लीजिए ट्रेड का जरिया था कि लोग कम आएंगे, बिक्री कम होगी, तो अल्लाह ने कहा वह इन खिफ तुम अलतन, और अगर तुम्हें अंदेशा हो फ़कर का, फ़कर क्या, अला क्या है, फ़कीरी लफ्ज़ भी गुर्बत है, अला किसको कहते हैं, उर्दू में कभी सुना, बिमहलोयाल, वो गुर्बत जो बच्चों की कसरत से हो, फैमिली बड़ी है, कमाने वाला पूरा नहीं कर पा रहा, यानी मुराद ये है कि तुम पे गुर्बत का डर है, तो फसौफ युग्नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशा, तन करीब अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा अपने फ़जल से, अगर वो चाहे, इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और हिकमत वाला है। तो मत सोचो कि हाजी कम आए, नजराने कम हुए, कुर्बानियाँ कम होंगी तो हमारा बिजनेस अच्छा नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, अन करीब इस कदर दुनिया की दौलत तुमको मिलेगी तुम संभाल नहीं पाओगे। और वाकई देखिए, नबी सल्लम की वफ़ात के चंद सालों के बाद हालात बदल गए, सल्तनत फ़ारस और रूम की फतूहात के बाद माल गनीमत का गोया के एक सैलाब उमड़ आया था मुसलमानों पे, इतना माल आ गया कि मुसलमानों के लिए संभालना मुश्किल हो गया। यही सूरत हाल थी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में फरमाया, फवल्लाहि लल फ़क्रु अख्शा अलैकुम, अल्लाह की कसम मुसलमानों, मुझे तुम पे फ़क्र और तंगी का डर नहीं है, यानी मैं ये नहीं कहता मेरे बाद मेरी उम्मत गरीब हो जाएगी, वलाकिन अख्शा अलैकुम, लेकिन मैं इस पे डरता हूँ तुम पे, अन तुबसत अलैकुम अद्दुनिया, तुम पे दुनिया फराख कर दी जाएगी, कमा बुसित तला मन का न कबलाकुम, जैसे तुमसे पहलों पे फराख हुई, फतना फसूहा कमा तना फसूहा, ये बड़ी बात है गौरतलब, कहा जितनी दुनिया ज़्यादा आएगी तुम उतना एक दूसरे के आगे बढ़ चढ़ के लिए तैयार हो जाओगे, वतुहलिकाकुम कमा हलकतुहुम, तो और तुम्हें वैसे हलाक कर दिया जाएगा जैसे दूसरों को हलाक किया जाएगा। ये जो लफ्ज़ है ना तनाफस, कुरान में गुजरता है पता है, वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़स अल्मुतनाफ़िसून, अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए ये तनाफस क्या है, मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने रिसेंटली सुनाई, दिल नहीं चाह रहा सुनाऊँ, लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि दुनिया की चीज़ों में भी लोग खुश नहीं होते। किसी से बात हो रही थी, बात अच्छी है कि बुरी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें बात सच है, उन्होंने बताया कि आज एक से बढ़कर दूसरी जो शादी होती है, तो शादी के मौके पे लोग अमूमन जो बातें करते हैं, तो वो कोई ऐसा शख्स है जो शादी के मौके पे कोई काम करता है वहाँ, लोगों की अपने तौर से बड़ी यानी फेवरेट चीज़ है वो, तो कहते हैं कि वो लोगों की बातें सुन रहा होता है, फलां की शादी में जो हुआ था ना अब इसमें नहीं करना, तो जब लोग मूवीज़ या वीडियोस बनवाते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शंस में लिखाते हैं कि जो क्लिप्स और जो तरीका फ़ोटो सेशन का तुमने हमारी शादी में इस्तेमाल किया है, अब फलां हमारे ख़ानदान की आ रही है उसमें ये नहीं करना, इस चीज़ पे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। यानी कहाँ खड़े होंगे, किस विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होना चाहते हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस तनाफ़ुस को दीन के तनाफ़ुस में बदल दें, भाग दौड़ कीजिए तो कुरान में और नेकियों में और तकवा में और खशियत में कीजिए। तो बहरहाल जो बात आज हुई, इसमें से कोई सवाल, कोई बात, कोई कमेंट,
कुरान की आयत से मुझे बहुत दिल जुड़वाती होता है, लेकिन आप सुनने आज तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खुद उस जान के अंदर खड़ा।
अब देखिए कुरान ने जंगों का नक्शा ऐसे खींचा कि जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं आंखों देखा हाल, اور میں سوچتی ہوں کہ آج کا مسلمان صرف نبی کی زندگی نہیں پڑھ چکا، باقی باتیں تو دور کی بات ہے، تو فات ہے مجھے تو اپنے اوپر، میں نے اپنے نبی سے محبت کے اتنے دعوے کیے لیکن میری دعووں میں دلیل کدھر ہے؟ زیادہ سے زیادہ نعت پڑھی ہے نا. کل میں یہاں سے گئی تو ایک معصوم بچہ آیا تھا تو میرے سے باتیں کر رہا تھا، کہا آنٹی آپ نعت پڑھ رہی تھیں نا، تو میں ہنس رہی تھی اس معصوم کو، کیا پتہ ہے بیبی ہے وہ. لیکن یقین کریں کہ نعت پڑھنا بری بات نہیں، لیکن صرف نعت پڑھنا اور سیرت نہ پڑھنا اور یہ کردار لوگوں کو کون دکھائے گا؟ یہ ہم دکھائیں گے، اور اللہ کی مدد ایسے کردار کے ساتھ آتی ہے.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم